नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान एनडीए के सभी नेता उपस्थित रहेंगे। नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राधाकृष्णन का एनडीए सांसदों से परिचय कराया। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों और सभी सांसदों से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए श्री राधाकृष्णन का सर्वसम्मति से समर्थन करने की अपील की है।
हम चाहते हैं कि एक साथ मिलकर के उपराष्ट्रपति जी का चुनाव में सर्वसम्मति से राधाकृष्णन जी का सपोर्ट करें, तो हमारा लोकतंत्र के लिए भी, हमारा देश के लिए भी और राज्यसभा को संचालन करने में भी बहुत उपयोगी होगी। तो पार्लियामेंट्री पार्टी के बैठक में सब पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया कि बहुत ही अच्छा इंसान को उपराष्ट्रपति जी का चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है।
इस बीच विपक्षी इंडिया गठबंधन ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान के कोटा बूंदी में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये जानकारी दी।
ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट नया एयरपोर्ट बनेगा, कोटा बूंदी एयरपोर्ट। करीब 20,000 स्क्वायर मीटर की टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी, 3,200 मीटर का रनवे बनेगा, 1,000 एकड़ जमीन राजस्थान सरकार इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है और करीब 1507 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। कैपेसिटी इसकी होगी 2 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम।
मंत्रिमंडल ने ओडिशा में राजधानी क्षेत्र नियंत्रित रिंग रोड के निर्माण की भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा और राजस्थान से संबंधित मंत्रिमंडल के फैसलों का स्वागत किया है। श्री मोदी ने कहा कि भुवनेश्वर में रिंग रोड परियोजना से यातायात में सुविधा होगी और जीवन सुगम होगा। श्री मोदी ने कोटा बूंदी में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के लिए राजस्थान के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि इससे पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत चीन सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया और सीमा विवाद के निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत यात्रा पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने प्रधानमंत्री को तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का संदेश और निमंत्रण सौंपा। प्रधानमंत्री एससीओ शिखर सम्मेलन के निमंत्रण के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग का धन्यवाद किया और अपनी स्वीकृति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे तियानजिन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के लिए उत्सुक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल नई दिल्ली में भारत और चीन सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वें दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष सीमा परिसीमन के आरंभिक सफलता का पता लगाने के लिए सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र के अंतर्गत विशेषज्ञ समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 26वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर जयशंकर मॉस्को में भारत रूस व्यापार मंच की बैठक को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। महाराष्ट्र में लगातार तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि मुंबई के कुछ हिस्सों में लगभग 300 मिलीमीटर की रिकॉर्ड तोड़ बारिश 3 से 4 घंटों के भीतर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि मूसलाधार बारिश से लगभग 14 लाख एकड़ में फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। और खेलों में एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो गई है। 15 सदस्यीय टीम का नेतृत्व सूर्य कुमार यादव करेंगे। शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया है। प्रतियोगिता 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में शुरू होगी। बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट विश्व कप और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक दिवसीय श्रृंखला के लिए महिला टीम की भी घोषणा की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।